आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
वर्दी पहने हुए किसी भी सैनिक को देखते ही हृदय में देशभक्ति की भावना और हाथ सलामी के लिए उठ जाते हैं। सैनिक की वर्दी को अक्सर इंग्लिश में सेकंड स्किन कहते हैं। ये वर्दी अभिमान, गौरव और अनुशासन की प्रतीक होती है। बात आती है कि जब वर्दी इस स्तर की नहीं रह जाती कि उसको पहना जा सके, तब क्या होता है। स्वाभाविक है, इस वर्दी की विदाई भी सम्मानजनक होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ करते हैं मेजर जनरल सेवानिवृत्त आशिम कोहली। वो पुरानी सेना की वर्दी को रिसाइकिल करते हैं और उससे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए स्कूल बैग्स बनाते हैं। इसके अलावा वो इससे मास्क, मोबाइल होल्डर इत्यादि उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं, क्योंकि बात वर्दी के सम्मान की है। लेकिन वो जो भी सामान बनाते हैं वो बाजार में नहीं मिलता है। वो किसी ब्रांड के साथ नहीं समझौता करते हैं, क्योंकि ये वर्दी और भारतीय सेना अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है। ये उन बच्चों के लिए दी जाती है जिनको इसकी जरूरत है। मेजर जनरल कोहली सेवज निसीम फाउंडेशन नामक संगठन के संस्थापक। अब सैनिकों की वर्दी एकत्र की जाती है और उन्हें स्कूली बैग तथा बच्चों के लिए दूसरे सामान के रूप में नया जीवन दिया जाता है। यह प्रक्रिया सावधानी पूर्वक एवं सम्मानजनक है। उपयोगी कपड़े को साफ किया जाता है, काटा जाता है और मजबूत स्कूल बैग में सिल दिया जाता है। फटे या अनुपयोगी भागों को फेंका नहीं जाता है। इन्हें आगे और ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, जिसे पाउच और छोटी मोटी वस्तुएं में रिसाइकिल कर दिया जाता है। यानी कुछ भी बर्बाद नहीं होता, एक धागा भी बर्बाद नहीं होता है। अब ये स्कूल बैग किन बच्चों में जाते हैं? संघर्ष प्रभावित क्षेत्र, दूर दराज के गांव के बच्चे, जिनके लिए ये बैग बहुत जरूरी है। सोचिए, यही वर्दी पहन करके कभी सैनिक सीमाओं पर पहरा देता था, अब स्कूल जाने वाले बच्चों के कंधों पर वो बैग नजर आते हैं। ये कहानी सुनने लायक और सम्मान का प्रतीक है। मेजर जनरल सेवानिवृत्त आशिम कोहली बताते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोता हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा जय हिंद, नमस्कार। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, पैदा हुआ हूँ और एक साधारण परिवार से था। और मैंने जिंदगी में काफ़ी संघर्ष देखे। मैं जहाँ रहता था वहाँ पीछे एक रेलवे लाइन जाती थी, जहाँ पे मुझे याद है मैं तकरीबन 9 वर्ष का था 1971 की वॉर में, ट्रेन से आती थी जिसमें आर्मी के लोग होते थे और हम सारे लोग बच्चे भी मिला के उनको टाटा बाय बाय करते थे और उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। ये सपना मेरा साकार हुआ कि मैंने 1982 में आर्मी ज्वाइन करी देहरादून में IMA के अंदर। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अच्छा नसीब मिला कि मैं आर्मी में मैंने ज्वाइन करी और तकरीबन 37 साल आर्मी में काम करके और 2019 में मैं आर्मी से सेनानिवृत्त हुआ। इस के दौरान मैंने कारगिल वॉर में हिस्सा लिया एक अटैक ऑपरेशन में और मैंने एक इंडियन आर्मी के UN पीस कीपिंग मिशन में वेस्ट अफ्रीका में सेरा लियोन कंट्री के नाम में, जो कंट्री का नाम है, उसमें वहाँ पे जाके मैंने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इसके दौरान देश के सभी हिस्सों में काम किया जिसमें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, JNK और नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है।
मेजर जनरल सेवानिवृत्त आशिम कोहली जी 37 सालों की अपनी सैन्य सेवाओं के बाद ये सब कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम है सेवज निसीम फाउंडेशन। उसके बारे में वे बताते हैं।
मैं आपको ऐसे बोलूंगा, जैसे आप जानते हैं, हम बोलते हैं कि इंसान तो जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। तो मैं जब 2019 में मेरी आर्मी की जो सर्विस की खत्म हुई, इसे मैं रिटायर्ड नहीं बोलना चाहता, रिटायर्ड बोलना चाहता हूँ, तो मैंने आर्मी की जब सर्विस खत्म करी तो उसके तुरंत बाद ही कोरोना आया था और कोरोना में सबका माइंड चलता रहा था कि हम कुछ कैसे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें और नए आइडियाज पड़े आ रहे थे। तो एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था तो हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि हम यूनिफॉर्म का क्या करें, तो हमें को कैसे अच्छे इस्तेमाल देना है। तो उसने बोला कि इसके हम मास्क क्यों ना बना लें, तो उसमें हमें मास्क की बहुत जरूरत थी हर जगह। तो वो हमारा खास पहला स्टेप कि हम आर्मी की यूनिफॉर्म को एक अच्छे काम के इस्तेमाल के लिए लाएं। और जैसे मैंने बोला है कि एक आर्मी की जो आत्मा आज ही मेरे अंदर जिंदा है, पर मैं ये चाह रहा था आर्मी की सर्विस के बाद कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, और साथ ही साथ में जो आर्मी से मेरा जो एक नाता है वो बना रहे, और मैं आर्मी के लिए कुछ अपनी जिंदगी में कर पाऊं जिसने मुझे जीवन में इसका कुछ दिया है। सो वो शुरुआत थी हमारी एनजीओ के आइडिया की, और जिसका नाम मेरी बेटी ने रखा था, उसका नाम रखा एवाज निसीम फाउंडेशन। सेवाज क्यों रखा, अगर हम सेना के तीन अंगों की बात करें, सेना, वायु, जल, उसके पहले शब्दों को उठाया गया सेवाज निसीम, जानते हैं बिना सीमा के, हम ये दर्शाना चाहते थे कि देश की जो सेना के तीनों अंग हैं वो देश की सेवा बिना किसी लिमिट के करना चाहते हैं। और इसको फिर हमने एक टैगलाइन दी, वर्दी का सम्मान, जो हम हर जगह यूज करते हैं। हमारी जो हमारा जो इरादा है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो वो उसको इरादे को रखते हमने वर्दी का सम्मान नाम रखा। इसका केवल एक ही मकसद था, समाज के लिए कुछ ये यूनिफॉर्म्स काम आ सकें, और इसको हम कभी भी ना तब और ना आज तक कभी भी इसको हम बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
वर्दी का सम्मान ये नाम उन्होंने दिया है अपनी इस पहल को, कैसे कार्य करते हैं, कैसे एक वर्दी का रूप बदलता है वे बताते हैं।
वर्दी का सम्मान हमने जब शुरू किया तो हम पूरे देश से यूनिफॉर्म इकट्ठी करते हैं जो सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की गई होती है, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है क्योंकि या तो वो स्टेड हुई है यूनिफॉर्म या घिस गई है। और इसका कोई जवाब नहीं था तकरीबन 75 सालों तक आजादी के कि इन यूनिफॉर्म को क्या किया जाए। तब हमने जब इस काम को शुरू किया तो हमको यूनिफॉर्म पानी शुरू हो गई। जब यूनिफॉर्म आ जाती है तो उनको हम दो भागों में सेग्रीगेट करते हैं, एक जो यूनिफॉर्म की कंडीशन बहुत अच्छी है और कपड़ा डायरेक्टली वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जिसको हम आप शब्द जानते हैं उसको बोलते हैं अपसाइकल। तो हम यूनिफॉर्म के कुछ हिस्सों को जैसे कॉलर या कप को हम काट देते हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल हो सकता है उससे जो प्रोडक्ट बन सकते हैं वो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है अपसाइकल। अब कुछ यूनिफॉर्म पुरानी हो जाती हैं, घिस जाती हैं, रंग फिर जाता है, वो कपड़ा भी डायरेक्टली इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, तो उसे मशीन में डाल के पूरा चर्न करके उसको नया फाइबर बना के रिसाइकल फैब्रिक बनाते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। अभी हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट मेनली होते हैं स्कूल बैग, इसके साथ में हम लैपटॉप बैग, और जिसमें पहले मास्क बनाते थे अब उसका इस्तेमाल कम है लेकिन अभी भी बनते हैं। उसमें हम कुछ आई फोल्डर्स बनाते हैं और कुछ मोबाइल पाउचेस, ऐसी चीजें इस्तेमाल जो लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें, और वो ऐसी चीज हो जो सम्मानपूर्वक ढंग से इस्तेमाल की जाए। कहते हैं कि हम उसका कोई मैट या दरी नहीं बनाना चाहेंगे जिसके ऊपर लोग चलें, या ऐसा कपड़ा जो सम्मानित ढंग से यूज हो सके। ये प्रोडक्ट के लाभार्थी कौन है जैसे आपने पूछा, तो हमारे जो लाभार्थी को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक हमारे दो इस्तेमाल होते हैं हमारे प्रोडक्ट से, एक है जरूरतमंद लोगों की मदद इन प्रोडक्ट के द्वारा, यो या हम उनके डोनेशन या गिफ्टिंग ड्राइव जो होते हैं, तो हमारे मैक्सिमम जो जाते हैं डोनेशन या गिफ्ट के अंदर वो स्कूल बैग जाते हैं जरूरतमंदों को। मैक्सिमम हमारे जो बैग स्कूल बैग होते हैं हम आर्मी को ही वापस भेजते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कुछ ट्रबल है, या नॉर्थ इंसर्जेंसी की ट्रबल है नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन के नहीं, या बॉर्डर में जहाँ बच्चों को शिक्षा की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उनको ही हम बैग भेजते हैं, उन बच्चों को ये जो पैड है वो मुहैया करने के लिए। तो एक हमारा यूज ये हो गया। दूसरा हमारा इस्तेमाल होता है हमारे जितने वॉर मेमोरियल्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में इंडिया देखने हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, या कारगिल वॉर मेमोरियल, लेने जैसलमेर लोंगेवाला मूवी बहुत भी है, ऐसे लोगों में जो जगह के लोग आते हैं वो एक देश प्रेम की भावना को लेके आते हैं। तो वहां पे जो सोविनियर शॉप्स हैं, जुक शॉप हैं, वहाँ पे हम रखना चाहते हैं ऐसे आइटम को, ताकि वो लोग इन आइटम्स को लें और इस्तेमाल करें जो देश प्रेम की भाव से जुड़े हुए हैं और जो वर्दी का सम्मान करना चाहते हैं। इसे हम ओपन बिजनेस मॉडल में नहीं लेके जाते ताकि लोग इसको आगे फैशन से अपना ना यूज करें, एक सम्मान की भावना से सम्मान पूर्वक इस्तेमाल करें। तो ये हमारे इस्तेमाल कि आप चाहे किसी भी देश में बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के इन भावों से जुड़े, जो चाहे मैंने वर्दी का सम्मान बोला और झंडे का सम्मान बोला, तो आप हमारी एनजीओ से नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
केवल वर्दी के सम्मान के लिए नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को भी सम्मानजनक रूप से रिसाइकल करने का तरीका निकाला है, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फिर से पूरी शान से लहराता है।
तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में जब हमने आजादी के 75 साल मनाए तो एक नया कैंपेन शुरू हुआ, जो हर साल 15 अगस्त को चलता है, हर घर से। आज अगर उससे हम पहले की बात करें तो किसी भी मौके पे हमें शायद हजारों में झंडे दिखते हों, लेकिन जो मेरा पास आंकड़ा उपलब्ध है उसके मुताबिक अब हर घर तिरंगा के उन दिनों में करोड़ों में झंडे इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये था कि इन झंडों का इस्तेमाल जब इनकी लाइफ पूरी हो जाए तो क्या करें। तो मुझे अपने इस वर्दी के सम्मान का भी वही थीम था कि पुरानी वर्दी को क्या करें, उससे ही ये विचार मन में आया कि इसको हम क्या करें, पुराने झंडों का कुछ हम इसी तरीके से इलाज कर सकते हैं। अब मैंने दिल्ली IIT दिल्ली के साथ में एक प्रोजेक्ट शुरू करा, एक रिसर्च प्रोजेक्ट। तो IIT दिल्ली ने इसकी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें अब हम पुराने झंडे इकट्ठे करके, इसको हम बोल रहे हैं झंडे का सम्मान, पुराने झंडों को इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करके और नए झंडे बना रहे हैं। और हमारे वर्दी के सम्मान में, झंडे के सम्मान में अल्टीमेटली हमारा जो एक मकसद है वो ये है, एक तो एनवायरनमेंट, जो मुझे मालूम है ऑस्ट्रेलिया में भी सभी लोग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान है कि कोई ऐसा काम ना करें कि जो एनवायरनमेंट को खराब करे। और एनवायरनमेंट के काम को ही हम अब देश प्रेम के साथ जोड़ें या सेना के सम्मान के साथ जोड़ें, तो उसको हमने इसके साथ में अलाइन किया है। और जहाँ तक निधि इंटरनेट रिसर्च दिखाती है कि नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने का, रिसाइकल करके नया फ्लैग बनाने का ये प्रोजेक्ट शायद दुनिया में पहली बार होगा।
सच है, सैनिक की वर्दी सम्मान और इमोशन से जुड़ी हुई होती है, उसी को ये संजो कर रखते हैं। ये उनकी पहल निसंदेह सराहनीय है। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।